हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 43। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशरासय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्भरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवेस्तवे, वेदिसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामघा, ध्यानावस्थिततत् गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा, दीवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 43। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ रिसाइट करने का प्रयत्न कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, कृष्णे स्वधामो भगति धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कृष्णे स्वधामो भगति धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कृष्णे स्वधामो भगति धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कृष्णे स्वधामो भगति धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कृष्णे स्वधामो भगति धर्म ज्ञानादि विसह कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्को धुनोदितः। शब्दों का अर्थ, कृष्णे स्वधामो भगति, कृष्णे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम स्वमन अपने धाम मन भगवान अपने धाम में उपगति यानी वापिस जाने पर, धर्म ज्ञानादि भी सह धर्म अर्थात धर्म ज्ञान अर्थात ज्ञान आदि भी अर्थात इसके अतिरिक्त जो भी सत्कर्म है सह साथ, कलौ नष्ट दृशामेश कलौ अर्थात कलयुग में नष्ट दृशाम अर्थात जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुके हैं उनके, एश अर्थात ये सब पुराणार्को धुनोदित पुराणार्क अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण, अधुना अर्थात इस समय उदित अर्थात उदय हुआ। अनुवाद, यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान प्रकाशवान है और धर्म ज्ञान आदि सहित कृष्ण द्वारा निज धाम चले जाने के पश्चात ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान में गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। अत्यंत सुंदर श्लोक है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि यह जो श्रीमद् भागवतम, कुछ लोग जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा श्लोक नंबर 42 में, उसमें क्या लिखा हुआ था कि यह श्रीमद् भागवतम चतुर्संशावयामास महाराजम परीक्षतम, कि महाराजा परीक्षत को यह भागवत महापुराण सुना है, तो कोई किसी का यह प्रश्न हो सकता है कि चलो ठीक है, उन्होंने उस समय महाराजा परीक्षत को यह श्राप मिला था कि उनको 7 दिन के अंदर मृत्यु होनी है, तो उनको यह सुना, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, तो उसके विषय में आज बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि कृष्ण स्वधामो भगति, जब भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञानादि सह सहमनो साथ, जब भगवान गए तो उनके साथ धर्म भी चलेगा। वास्तविक धर्म क्या है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बताएंगे कि वास्तविक धर्म है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जाने। अब जब भगवान यहाँ पर है नहीं, मतलब भगवान जब द्वापर युग के अंत में आए और फिर अपने एक टाइम पीरियड के बाद चले गए, तो फिर कोई भगवान के साथ अपने संबंध को और अपने कर्तव्यों को कैसे जानेगा। और फिर अगर वही तो धर्म है, अगर धर्म नहीं कर रहा तो धर्माविहीनो पशु भी समाना, धर्म के बगैर तो जीव मनुष्य पशु बन जाएगा। और धर्म कहाँ से पता चलेगा, श्री पपर में बताएंगे कि धर्म पता करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि धर्म जो है वो उसकी स्थापना केवल भगवान ही कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान स्थापित करते हैं, तो वो स्वयं ही बताएंगे या फिर उनका कोई शक्ति आवेश अवतार ही धर्म के विषय में बताएगा। और यदि जीव धर्म नहीं करेगा तो क्या, तो फिर उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा और उसका जीवन आहार निद्राबाई मैथुन, ये जिस तरह पशुओं के कार्य हैं, केवल उसी में बीत जाएगा। तो जब भगवान चले गए तो धर्म भी उनके साथ चला गया। तो फिर जैसे ऋषियों ने पूछा था ना अंतिम प्रश्न 1.1.23, पहले अध्याय के श्लोक नंबर 23 में जितने ऋषि थे उन्होंने एक अंतिम प्रश्न पूछा था, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्येश्वर धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेति धर्म कम शरणं गतम्। कि जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज स्थान के लिए प्रयाण कर गए तो आप कृपा करके बताइए कि उसके बाद धर्म ने किसकी शरण ली। तो यहाँ पर आज बता रहे हैं कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, क्योंकि धर्म और ज्ञान भगवान के साथ चले गए। अब बगैर धर्म और बगैर ज्ञान के संसार में केवल अंधकार और जीवों की कलाओ नष्ट दृशामेश, कलाओ का मतलब होता है कलयुग के कारण नष्ट दृशा, यानी मनुष्य की दृष्टि नष्ट हो गई। दृष्टि नष्ट हो गई उस अर्थात जीव को वास्तविकता दिखने नहीं लगी, वो केवल भौतिक देहात्म बुद्धि में रहकर जीने लगा। तो उसके क्योंकि दृष्टि नष्ट हो जाएगी तो पुराणार को धुनो देता। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का पुराण है वो सूर्य के समान प्रकाशमान है। और उस समय जब भगवान इस संसार से जा रहे थे तो भगवान सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीमद् भागवतम को उदित करके गए, उनको उदय ये प्रकाशमान सूर्य, ताकि जब इस श्रीमद् भागवतम का जो अध्ययन करेंगे उन्हें ही धर्म के विषय में पता चलेगा, वही अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ सकेंगे और वही अपने संबंध अपने कर्तव्य को जानेंगे। और इस संसार से जब इनका शरीर छूटेगा तो अपने अंतिम गंतव्य को जानकर उसे प्राप्त करेंगे। तो यह श्रीमद् भागवतम हम कलयुग वासियों के लिए एकमात्र आसरा है, एकमात्र दिव्य दृष्टि प्रदान करने का एकमात्र जरिया है, जिसके जरिए हम भगवान के साथ अपने प्रेम को अपने संबंध को जोड़ेंगे, अपनी वास्तविकता को जानेंगे कि हम भगवान के दास हैं और अपने कर्तव्य क्या, हमें भगवान की सेवा करनी है वो जानकर, और फिर भौतिक शरीर छूटने पर अपने अंतिम गंतव्य को जान पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का अपना नित्य धाम है, जहां वे पार्षदों तथा सात सामग्री के साथ शाश्वत भोग करते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर भगवान के धाम के विषय में बताया जा रहा है। भगवान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में नदत्थासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ति तत्थाम परमं मम।
भगवान बताते कि मेरा धाम इस भौतिक धामों की भौतिक जितने भी जगह हैं या जो लोग हैं उनकी तरह नहीं है, उन्हें सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश की मेरे धाम को आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रकाशमान धाम है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दो तीन शक्तियां होती है, एक तटस्थता भी होती है। तटस्थता में तो जीव आते हैं, अंतरंगा शक्ति में भगवान की दिव्य जो शक्ति है, जो जैसे भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के जितने पार्षद हैं, भगवान की साज सामग्री, वो सब अंतरंगा शक्ति। और ये भौतिक जगत जो है वो बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। आगे श्री रूपा जी बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति यानी आत्म माया के द्वारा नीचे आते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 6 में इस बात को बताया। भगवान कहते हैं अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा, अर्थात भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, फिर भी भूतानां ईश्वरोपि सन् जितने भी भूत हैं, जितने भी जन्म लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सबका ईश्वर हूँ। प्रकृति में स्वामधिष्ठाय, प्रकृति यानी दिव्य रूप में अपने इस तरह से स्थित स्वामधिष्ठाय दिव्य, जैसे मैं दिव्य रूप में हूँ उसी रूप में संभवाम यात्ममा, संभवामि मतलब अवतरित होता हूँ आत्मा माया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। यानी कि जब भगवान संसार में आते हैं तो वो कोई साधारण, उनका शरीर नहीं होता है हम जैसा हाड़ मांस का बना हुआ, हमारे जैसे वो भगवान नहीं होते, वो आत्म माया अपनी दिव्य अंतरंगा शक्ति से वो प्रकट होते हैं संसार में। अतः उन आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतः उनका रूप, उनका नाम, उनका यश, उनकी साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृष्टि नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर संसार में भगवान के आने का कारण श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब देखो संसार में जीव अगर धर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, वो नरक में चला जाएगा, वो कभी भी उन्नति नहीं करेगा। और धर्म क्या है, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना। तो फिर यदि भगवान इस संसार में आकर कोई लीलाएं नहीं करेंगे, उनके उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होगा, तो फिर धर्म का कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए भगवान पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इस संसार में अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता, या तो वे या उनका शक्ति आवेश अवतार ही धर्म की स्थापना धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर के साथ अपने संबंध तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। यानी वास्तविक धर्म क्या है, भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, उस संबंध के जानने के बाद जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को पूरा करना, और भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद अंतिम गंतव्य यानी भगवान के परम धाम को प्राप्त करना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन नियमों को जान पाते हैं, उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतः धर्मकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते ज्यादातर लोग संसार में आने के बाद माया के पाश में बंधे रहते हैं, यानी कि उनको धर्म के विषय में भगवान के विषय में जानने में कोई रुचि नहीं होती है। उनके लिए धर्म क्या होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की जाए। अगर वो धर्म करते भी हैं तो किस लिए? स्वर्ग में जाने के लिए, कि स्वर्ग में जाएंगे तो अधिकांश ना धर्म मतलब इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग प्राप्त होगा। वास्तव में उनका जीवन जो भौतिक लोग होते हैं अधिकांश तक किस तरह जीते हैं? काली आहार निद्रा भय मैथुन में उनका जीवन गुजर जाता है। और उसके आगे जो बहुत ही बद्ध जीव जो होते हैं, बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसे होते हैं उनमें से जो कि इस नियम को समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है बल्कि भगवत प्राप्ति है, भगवान को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। बहुत ही कम ऐसे जीव होते हैं। भगवान भी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता 7.3 में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धः यदतामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, कि मनुष्यों में से करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक तो ये सोचता है कि हमें अब ये भौतिक जगत में आहार निद्रा में अपना समय नहीं गंवाना है बल्कि थोड़ा सा आध्यात्मिक तरक्की करनी है, जिसमें वो क्या सोचते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है। इसीलिए भगवान कहते हैं यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्त्वतः, उन सिद्धों में से कोई एक ही होता है जो मुझे तत्व से जानता है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलह प्रदान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं, कि दूसरे युगों में फिर भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज होता था, क्योंकि कलयुग में क्या है, प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्य सुखद्रता, कि एक तो बेचारे मनुष्य की आयु कम है, ऊपर से वो भौतिक कार्यों में बहुत ज्यादा तीव्रता से कार्य करते हैं लेकिन आध्यात्मिकता में रुचि नहीं ले रहे हैं। अगर रुचि भी ले लेते हैं तो उनको ऐसा संग नहीं मिलता है, पवित्र शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाए तो भी भौतिक जीवन में इतने कष्ट हैं, इतने युपद्र हैं, इतनी बेचैनी, इतनी डिस्टर्बेंस है कि वो आध्यात्मिकता में ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते। तो कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। उनको ऐसा लगता है क्यों करें भक्ति, मतलब आज का मनुष्य कलयुग का मनुष्य ये सोचता है कि हम क्यों करें, मतलब वो लोग पागल लगते हैं जो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, जो माला करते हैं, जो सुबह सवेरे उठकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंगल आरती करते हैं या संध्या आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि पागल है, इन्होंने अपनी लाइफ को कितना टेस्टलेस बना दिया है, कोई चार्म नहीं है लाइफ में, कोई इंजॉय नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो ये कलयुग के प्राणी उनका क्या मतलब होता है, खाओ पियो मजे करो, यही ईश करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो ये समझते हैं। और इस तरह से उनको दैवी धार्मिक जीवन में कोई सरोकार नहीं होता, उनका दिल ही नहीं होता है, उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी कोई कार्य करे। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान विज्ञान तथा संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। मतलब मन जो चाहता है या बुद्धि जो डिसीजन लेती है, उनमें मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मेरी ये इच्छा है, मन और बुद्धि से आगे कुछ भी नहीं दिखता है। और जो भौतिक ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, जो भौतिक चीजें हैं, उनमें संपन्नता में प्रगति करने में अत्यंत गर्व, बस आगे बढ़ते हैं भौतिकता में, तो उनको बहुत ही अपने आप पर गर्व होने लगता है। वे इस शरीर को त्यागने के बाद श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जिनको केवल आहार निद्रा भय मैथुन से के अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं है जो मन की मांगों को पूरा करते हैं बुद्धि को इस्तेमाल करके, और जो भौतिक ज्ञान में ही खाली उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे इस शरीर के त्यागने के बाद कुकर या सुकर बनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तक जीव आध्यात्मिकता में तरक्की नहीं करता, जब तक जीव धर्म नहीं करता, जब तक भगवान के साथ अपने संबंध का निर्माण नहीं करता, जब तक वो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करता, तब तक वो मनुष्य जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो और भी नीचे जाएगा। क्योंकि भगवान ने, अभी देखो संसार में भी हम जो भी चीजें हमें गवर्नमेंट देती है, जैसे बिजली, पानी, वाटर सप्लाई करती है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी देती है, उनको क्या होता है, हम उनको यूज करते हैं, उसकी बदले में हम उनका एक बिल भरते हैं। लेकिन अगर कोई इस सब अपनी जो भी ये चीजें हैं गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, उनका बिल नहीं भरेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट का कोई एजेंट आएगा और उनसे वो सारी फैसिलिटीज लेकर चला जाएगा, है ना। आपकी बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, वाटर का भी कनेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि आप और भी लो। उसी तरह से आपको यहाँ मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीजें करनी है। धर्म किसलिए करना है, कि आपको भगवत प्राप्ति करने के लिए धर्म करना है। अर्थ किसके लिए करना है, ताकि अर्थ कमा कर आप धर्म अच्छे तरीके से करो। इच्छा कितनी, ताकि हम जी सके, और मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है। यदि हम इसको नहीं समझते हैं तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं तैयार हो जाओ नेक्स्ट जन्म में कुकर अर्थात कुत्ता, सुकर अर्थात सुअर, कुत्ते और सुअर, यानी कि आज जो कुत्ते और सुअर बने हुए हैं उनका यही वजह यही है कि अगर उनको पहले जन्म मिला था मनुष्य का और उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की, तो आज भी जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कर रहे, भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट जन्म में कुत्ते और सुअर बनने के लिए तैयार है। क्योंकि उन्हें जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर दिया। अब चरम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति। चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन उन्होंने अपने जीवन का चरम लक्ष्य क्या बना दिया है, इंद्रिय भोग। तो फिर उनको कभी भी अपने चरम लक्ष्य भूल गए हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो जानवरों की योनि को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे रहे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का विनाश कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो श्री भगवान श्री कृष्ण कब आए थे, द्वापर युग के अंत में आए थे, लेकिन कलयुग के प्रारंभ होते ही वो चले गए अपने धाम में। और यहाँ पर जब आए थे तो बहुत सारे कार्यकलाप भगवान की लीलाएं की और एक सिद्धांत जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान ने दिया, जिससे क्या होगा कि धर्म के जितने भी बनावटी नियम हैं और कुछ भी धर्म के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है संसार में, उस सब का उन सब का नाश किया। भगवान ने क्या कहा, सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, कि जीव के जितने भी बाकी धर्म हैं वो सब आपको कभी भी कल्याण नहीं कराएंगे। आपका कल्याण यदि है आप तो सिर्फ किसमें है, कि मेरी शरण में आ जाओ। क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें समस्त पापों से मोक्ष प्रदान करूंगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का विनाश किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने फिर क्या किया, अब देखो श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने ये तो बता दिया कि आपको मेरी शरण में आना है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरे बारे में चिंतन करना है, मेरा भक्त बनना है और मुझे नमस्कार करना है, ये तो बता दिया, सिद्धांत बता दिए। लेकिन वो कैसे करना है, हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे उदय होगा, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई। उसके लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण से पूर्व जाने से पहले उन्होंने क्या किया, नारद के माध्यम से शिवव्यास देव को श्रीमद् भागवतम का संदेश संकलित करने के लिए, यानी कि जब नारद मुनि कौन थे, व्यास जी के गुरु महाराज थे, तो वेद व्यास ने उस समय 17 पुराण लिख लिए थे, 4 वेद, 17 पुराण, 108 उपनिषद, बाकी सारे जितने भी ग्रंथ शास्त्र थे वो सब उन्होंने लिख लिए थे, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति प्रदान नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने अपने गुरु यानी नारद मुनि से कहा कि मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं लेकिन मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं क्या करूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के माध्यम से सुखदेव को, सॉरी वेद व्यास जी को यह संदेश दिया कि व्यास देव को श्रीमद् भागवतम का आदेश संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया, कि जब श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान की समस्त लीलाएं, भगवान के समस्त कार्य कलाप, भगवान के समस्त जितने भी प्रेम के आदान प्रदान के विषय में भक्त पढ़ेंगे, तो इससे उनका हृदय इतना पवित्र हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम उदय होगा। तो फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही खास बात बता रहे हैं कि इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम यह दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस युग में सब अंधे ही हैं, अगर वो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता के इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो इस युग का एकमात्र प्रकाश है। जैसे हमने अभी श्लोक में क्या पढ़ा है कि पुराणार को धनोदित, कि ये जो पुराण है वो सूर्य की भांति है। अगर कहीं पर हम ऐसा अगर सोचें कि कभी सूर्य ना उदय हो तो केवल अंधकार ही अंधकार हो। श्री प्रभुपाद जी बोले श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं, वास्तविक आलोक यानी वास्तविक दिव्य दृष्टि, वास्तविक आध्यात्मिक अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। किन दोनों ग्रंथों की, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो ग्रंथ ही आपको आध्यात्म में उन्नति कराने के लिए एकमात्र तरीका। जब तक हम इन दो ग्रंथों को अपने जीवन में नहीं लाते हैं तब तक सवाल नहीं पैदा होता है कि हम भले जितने भी लेक्चर सुन लो लेकिन ये दोनों ग्रंथ जैसे हम लोगों को पढ़ने हैं, उनको सीखना है, उनको समझना है, और इसमें जो भगवान के कार्यकलाप हैं उनके विषय में जानकर शुद्ध हृदय से, तो फिर हम आध्यात्मिक में उन्नति कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और पूरा कैसे होगा, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करने से। और आगे श्री प्रभुपाद जी बताए श्रीमद् भगवद गीता तो भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है, प्रारंभिक अध्ययन यानी जब तक आप श्रीमद् भगवद गीता को समझ नहीं लेते हो, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ नहीं लेते हो, श्रीमद् भगवद गीता के विषय में सब कुछ जान नहीं लेते हो, तब तक आपको अधिकार नहीं है कि आप श्रीमद् भागवतम महापुराण को स्पर्श करो। तो श्रीमद् भगवद गीता तो भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है, श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व है। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, बेस जब बना नहीं होगा ना, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। जीवन का आश्रय आप तब तक प्राप्त नहीं, आश्रय तत्व में प्रवेश करने से पहले आपको उस प्रारंभिक अध्ययन यानी श्रीमद् भगवद गीता को पहले पढ़ना है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये जो श्रीमद् भागवतम है वो आश्रय तत्व अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण और भागवतम में कोई अंतर नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम भगवान का वांग्मय स्वरूप है, अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माने। यानी कि जैसे हम भगवान को मानते, अगर भगवान अभी हमारे सामने हो और वो बात कर रहे हो तो हम कैसे उनकी बात को श्रवण करें, है ना, एक एक बात को भगवान को देखें, भगवान को सुने, भगवान को कैसे प्रेम करें, भगवान की कैसे आदर करें। तो इतना ही आदर हमें श्रीमद् भागवतम का करना चाहिए क्योंकि वो साक्षात भगवान ही हैं। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माने। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वह अभिन्न है, यानी भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। देख सकता है मतलब जो श्रीमद् भागवतम के वचनों को समझता है, जो श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई भगवान की लीलाओं को पढ़कर आनंदित होता है। ऐसा लगता है जब हम श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं को, भगवान के कार्यकलापों को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर हम भी भगवान के साथ वह लीला का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि भागवत और भगवान में फर्क नहीं है। तो जैसे हम भागवतम को पढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो इस श्रीमद् भागवतम महापुराण जो कि स्वयं भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, हमें उसे किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, किस तरह से श्रवण करना चाहिए, उसके विषय में बता रहे हैं आगे श्लोक नंबर 44। कृपया मेरे साथ साथ रिसाइट कीजिए। सुत गोस्वामी कहते हैं, तत्र कीर्तयतु विप्रा विप्रशीर्भूरि तेजस अहम चाध्य गमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहं वा श्रावयिष्यामि यथादीतं यथामति। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशीर्भूरि तेजस अहं साध्य गमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहं वः श्रावयिष्यामि यथादीतं यथामति। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशीर्भूरि तेजस अहं साध्य गमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहं वः श्रावयिष्यामि यथादीतं यथामति। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशीर्भूरि तेजस अहं चाध्य गमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहं वः श्रावयिष्यामि यथादीतं यथामतिः। शब्दों का अर्थ, तत्र कीर्तयतो विप्रा, तत्र मतलब वहां पर, कीर्तयतो अर्थात कीर्तन करते हुए विप्रा, हे ब्राह्मणों, विप्रर्षि भूरि तेजस, विप्रर्षि अर्थात ब्रह्मर्षि से, भूरि अत्यधिक तेजस यानी शक्तिशाली, अहम चाध्यगमं तत्र, अहम मन में च मन भी अध्यगमं अर्थात समझ सकता हूँ, तत्र उस सभा में, निविष्टस्तद अनुग्रहात्। निविष्ट का क्या मतलब होता है, अत्यधिक एकाग्र चित्त से। मैंने वहां पर सुना, लेकिन सुना कैसे, बहुत ही एकाग्र चित्त होकर, और क्या हुआ, तद अनुग्रहात् उनकी कृपा से, सोहम वह श्रावयिष्याम, सोहम समन वही वस्तु, अहम मैं वह तुमको, श्रावयिष्यामि अर्थात सुनाऊंगा, कैसे सुनाऊंगा, यथादीतं यथामति, जैसे अपने अनुभव के आधार पर, कि जैसे मैंने सुना है, जैसा मुझे बहुत ही एकाग्रता से मैंने वहां पर सुना और जैसा मुझे समझ में आया, कैसे समझ में आया, तद अनुग्रहात उनकी कृपा से, मैंने एकाग्रचित्त होकर जब वहां पर सुना। और अभी ए ब्राह्मणों, क्योंकि आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, तो धर्म ने भागवतम की शरण ली, तो आज अगर हम भी अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी भागवतम की शरण ग्रहण करनी है। तो मैं आपको उसी तरह से एज इट इज जैसा मैंने सुनाया है वैसा मुझे अपनी जैसे समझ में आया है जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। तो कृपया आप श्रवण कीजिएगा। तो अनुवाद देखिए, सुख गोस्वामी कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराजा परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाई तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्तिशाली ऋषि से भागवतम सीखी। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने अनुभव किया। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को सीखने का क्या तरीका है कि हम विनीत भाव से ध्यान से एकाग्र चित्त होकर किसी शुद्ध वैष्णव से श्रवण करें और उसके बाद उसको आगे हम बताएं। अनुवाद तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे किसी स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुनी है तो उसे भागवत के पृष्ठों में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। यानी कि अगर आप भागवतम में भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो केवल भागवतम को पढ़कर या भागवतम को है ना ऐसे ही अगर किसी से भी सुनकर, जो कि व्यापार चलाने के लिए भागवतम पढ़ते हैं या अपना धंधा चलाने के लिए ऐसे जो कारोबार के रूप में भागवतम को देते हैं उनसे आप कभी भागवतम का पूरा लाभ नहीं ले सकते हो। यदि किसी सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा के से भागवतम सुनना, यानी कि कोई ऐसा महात्मा जो वाक्य में भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त, शुद्ध हृदय से जब कोई शब्द उच्चारण करता है तो फिर वह शब्द जो है वो हमें भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवतम को श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। एज इट इज जैसा श्रील प्रभुपाद ने कहा है हम उन्हीं वाक्यों को दोहरा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं फिर उन्हें भागवतम के पृष्ठों में साक्षात भगवान के दर्शन, यानी भागवतम के शब्द जो हैं, जो भागवतम के पेजेस हैं, उन्हें भगवान साक्षात दिखेंगे। लेकिन खतरनाक लफ्ज है और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथा वाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है तो वैसा संभव नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि कोई ऐसा किराए का कथावाचक आप मंगवा लो और उसको बोलो भाई आप भागवतम सुना लो, मैं आपको इतना धन देता हूँ, और वो इस धन से अपने भौतिक विषय भोग की सामग्री लेता है तो वैसा संभव नहीं। यानी कि फिर आपको भागवतम में भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भागवत के समझने का यही रहस्य है, ना ही ऐसे व्यक्ति से भागवतम समझी जा सकती है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवतम की व्याख्या करता है। संसारी पांडित्य यानी भौतिक बुद्धि से जो भागवतम के विषय, जब तक कोई विनीत भाव से गुरु की शरणागत होकर, जब है ना वास्तविक भगवान का भक्त जब तक हमें नहीं समझाएगा, जब तक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हम श्रीमद् भागवतम को नहीं श्रवण करेंगे तब तक वास्तविक जो लक्ष्य है, जो रहस्य है, वो समझ में नहीं आएगा। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि हम भागवतम श्रीमद् भागवतम जो है वो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सुन रहे हैं। यदि कोई भागवतम के पृष्ठों में कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से श्रीमद् भागवतम समझनी होगी, अन्य किसी से नहीं। यहाँ पर फिर से श्रील प्रभुपाद जी जो परंपरा से आए हुए गुरु जो होते हैं, जो कि साक्षात भगवान के भक्त होते हैं और इसके विषय में उसकी ना बता रहे हैं महानता, कि जब तक हम इस तरह से किसी प्रतिनिधि, प्रमाणिक प्रतिनिधि से भागवतम को नहीं समझेंगे तब तक हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए हमें किसी और से नहीं सुनना चाहिए। यही एकमात्र विधि है। अब भागवतम सुनने की एकमात्र विधि क्या है, जैसा कि यहाँ पर बताया कि श्री सुखदेव गोस्वामी, अब देखो श्रीमद् भागवतम जो है वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाए, सुखदेव ने परीक्षित को और सोनिक आदि ऋषियों को सुनाए, और इसी तरह से वही भागवतम जो है करते करते श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हम तक पहुंची है और हम श्रीमद् भागवतम को श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सुन रहे हैं, तो यही एकमात्र विधि है। इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई और अल्टरनेट नहीं है कि अगर ना किसी और के द्वारा भी हम सुनकर भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। ज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात है, ऐसा नहीं है कि किसी और से आप सुनोगे तो आपको कथा नहीं आएगी, मतलब वो स्टोरी तो समझ में आ जाएगी कि भाई ऐसा हुआ था उसके बाद ऐसा हुआ था, स्टोरी समझ में आ जाना एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक में भागवतम अध्ययन करने का मतलब ये नहीं कि आपको स्टोरी समझ में आए। क्या मतलब है, ताकि हमें भगवान के प्रति अपने हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक मलिनता है वो समाप्त हो जाए और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, तो वो केवल एक शुद्ध भक्त के द्वारा श्रवण करके ही हम उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे इस संदेश का को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से श्रवण किया, उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस प्रकार उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना। केवल सुनना ही काफी नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल पाठ की अनुभूति प्राप्त करे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने क्या कहा है, तत्र विनिष्टस्तदनुग्रह निविष्टस्, निविष्ट का क्या मतलब होता है, एकाग्र चित्त होकर ध्यान से। तो ऐसा नहीं, आजकल क्या होता है, हम लोग सुनते हैं भागवतम और श्रवण कर रहे होते हैं, शरीर उधर होता है और मन कहीं और जगह पर होता है, आत्मा कहीं और जगह पर होती है, बुद्धि कुछ और सोच रही होती है। एकाग्र चित्त होकर हमें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए, जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर हमें एकाग्र होना चाहिए, तभी हम उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं केवल सुनना ही काफी नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल पाठक की अनुभूति प्राप्त करें। जितना मूल पाठ है यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उस वो क्यों बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है, सिद्धांत को समझना चाहिए। और निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवतम के रस को अपने कानों से पिया था। निविष्ट यानी एकाग्र चित्त होकर भागवतम को के रस को अपने कानों से पिया था। भागवतम को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है, मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से मनोयोग से सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होगी। हर एक शब्द में, हर एक पेज पर भगवान का साक्षात्कार होगा। यदि या क्या दो विधि बताई, एक तो शुद्ध भक्त से सुनना और एकाग्र चित्त होकर ध्यान से सुनेंगे तो फिर रियल जो वास्तविक इसका लाभ है वो प्राप्त होगा। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम ग्रहण करने का रहस्य उल्लिखित है, जो ये बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने का रहस्य क्या है। श्री प्रभुपाद जी आगे बहुत ही सीरियस और बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जिसका मन शुद्ध नहीं है वह मनोयोग से नहीं सुन सकता, है ना। अब आपको एकाग्र चित्त से सुनना है लेकिन मन शुद्ध ही नहीं है तो फिर मन टिकेगा नहीं। शुद्ध मन ही एक भगवान की बात में टिक सकता है, क्योंकि भगवान और भगवान के भागवतम में कोई अंतर नहीं है। तो जहाँ अपवित्रता है वहाँ भगवान नहीं आ सकते, इसी तरह से जहाँ अपवित्रता है, जो मन अपवित्र है वहाँ पर भगवान नहीं, भगवान के शब्द भी नहीं आ सकते। और फिर वो मन कैसे पवित्र होगा, आगे बताते हैं। जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है। ये चार काम पशु करते हैं क्या? आहार निद्रा भाई मैथुन। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य को ये नहीं करने हैं। जीव को जब भी इस कोई भी शरीर धारण करता है तो ये कार्य करने होते हैं, लेकिन उसमें कितनी पवित्रता है, कितना पवित्र आहार खाया जा रहा है, कितना पवित्र तरीके से है ना काम इच्छा पूरी की जा रही है, कितना पवित्रता हम अब मैंने कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, चाहे खा रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, चाहे अपने रक्षा के लिए घर बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें यदि केंद्र बिंदु कृष्ण है तो वो पवित्र हो जाता है। लेकिन यदि केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है तो वो अपवित्र हो जाते हैं, अशुद्ध होते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि जब तक इन कार्यों में शुद्ध नहीं है वह कर्म भी शुद्ध नहीं करेगा। अब अगर कार्य शुद्ध नहीं है तो फिर क्या होगा कि उसका मन भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। अगर हृदय पवित्र है, शुद्ध है, तो प्रारंभिक पृष्ठों मतलब शुरू से ही हमको ऐसा लगेगा कि भगवान की अनुभूति होती है, हो रही है, और एक एक शब्द में भगवान भागवतम के एक एक शब्द से हम भगवान की अनुभूति करने को, यानी कि मन शुद्ध होना चाहिए। और मन की अपवित्रता कैसे साफ होती है वो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम, कि हृदय का अगर मल दूर करना है तो उसके लिए केवल श्रवण करना काफी नहीं, श्रवण करने से क्या भाव उत्पन्न होगा, लेकिन मन पवित्र करने के लिए आपको भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। यानी कि केवल पत्थर की बात ही सुनते नहीं रहना है, नियमों को फॉलो करना है। जैसे नियम है कि भाई हमें ये नहीं खाना है, ये चीजों से परहेज करना है, ये चीजें अपने जीवन में नहीं करनी है, जो निषेध है वो नहीं करना है। अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान की भक्ति में अनुकूल है वही कार्य करने हैं और जो प्रतिकूल है उन कार्यों से दूर रहना। यदि हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, और जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक हम भागवत महापुराण को सही तरह से सुन नहीं सकते, एकाग्र चित्त से सुन नहीं सकते, और जब तक एकाग्र चित्त से सुनेंगे नहीं तब तक हम उसका पूरा पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। यानी ध्यान बहुत आवश्यक है, पवित्रता बहुत आवश्यक है, नियमों को पालन करना बहुत आवश्यक है। केवल हम जैसे कब से सुनते आ रहे हैं कि शुद्ध वक्ता होना चाहिए, शुद्ध वक्ता होना चाहिए, शुद्ध भले वक्ता जितना भी शुद्ध हो, लेकिन अगर आप हम खुद भी इन शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, आहार निद्रा वाय मैथुन में पवित्र नहीं है, और नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कभी जब ये ना श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन करते तो श्रील प्रभुपाद एकदम पवित्र, यानी उनके अंदर कोई भी मलिनता नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध भगवान की शक्ति आवेश अवतार है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता था कि उनके प्रवचन में आए हुए भी व्यक्ति जो होते थे वो उनके अंदर भी पवित्रता नहीं जगती, यानी कि वो भी क्या करते थे, कीर्तन सुन के चले जाते थे, भागवत में रुचि नहीं होती थी। या फिर अब बहुत सारे ऐसे भक्त भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा शुद्ध भक्तों से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन यदि खुद अपना ही मन पवित्र नहीं है। देखो श्रवण करने के लिए भी भगवान ने तीन क्वालिटीज बताई, क्या करना है, प्रणिपात करना, सबसे पहले आपको उनका है ना उनको प्रणाम करना है, उनका आदर करना है, उसके बाद उनसे प्रश्न भी पूछने हैं, पत्थर की तरह श्रवण नहीं करना है, प्रश्न पूछने हैं कि कैसे हुआ, भगवान ने ऐसा किया था क्या, ऐसा किया था भगवान ने तो उसका क्या कारण है। अभी जैसे है ना अगासुर के वध के बाद सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भाई एक साल तक ये घटना कभी भी है ना ब्रज में इस घटना के विषय में किसी ने भी बात नहीं की। तो फिर परीक्षण महाराज ने पूछा कि एक साल तक इतनी बड़ी घटना की बात क्यों नहीं की। फिर सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि इसलिए नहीं की क्योंकि उसके बीच में ब्रह्म विमोहन लीला आ गई थी। यानी कि कोई भी ऐसी बात जो ऐसा नहीं कि भगवान भगवान के ऊपर ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए भगवान की लीला, लेकिन जो कुछ समझ में नहीं आता है उसके विषय में पूछना चाहिए जिससे हमारी भक्ति में उन्नति होती है। तो परिप्रश्न न सेवया, और उनकी सेवा करनी चाहिए जो शुद्ध वैष्णव होते। तो ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उसी तरह संसार में भी कुछ लोग शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं क्योंकि भौतिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं और वो सोचते हैं कि भाई भक्तों के साथ जाएंगे भागवतम की कथा सुनेंगे तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम टेंशन फ्री हो जाएंगे, और जाके सुनते हैं। वो ऐसे ही है जैसे कोई अगर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन भी देते हैं, कुछ बातें भी बताते हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, और घर जाकर वो क्या करते हैं वो कबर्ड में डाल देते हैं और फिर डॉक्टर की बातों को अगर फॉलो नहीं करते तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा टाइम तक उन मेडिसिन को खाते हैं और डॉक्टर ने जो भी है ना बातें बताई हैं उनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन जैसे ही सही हो जाते हैं तो फिर वापस से भूल जाते हैं कि मुझे ये करना है। मेडिसिन जो पूरी खत्म नहीं करते, कोर्स भी कंप्लीट नहीं करते और डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको भी फॉलो नहीं करते। और इस तरह से भी क्या होता है कि वो भक्त भी जो है ना थोड़े दिनों के लिए भागवतम श्रवण करते हैं। ऐसा नहीं है, भागवतम के लिए एक पहले हमने एक श्लोक पढ़ा नित्यम भागवत सेवया, कि भागवतम को कंटिन्यूस अपने जीवन का एक अंग बना देना है, डेली उसका श्रवण करना है और कभी भी हर समय भागवतम के विषय में सुनना है। कोश ईगरनेस होनी चाहिए कि हमें किसी शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भागवतम को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। केवल इसी से हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं, श्रवण मंद भक्ति मंद। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो समझो भक्ति भी हमारी नहीं होगी। लेकिन केवल शास्त्र को पढ़ते रहने से भी अगर हम उसको रियलाइजेशन हमें नहीं प्राप्त होती है तो क्या कर रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं बुकिश नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन इज यूजलेस। अगर हम खाली शास्त्र को अध्ययन कर रहे हैं लेकिन हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को, भगवान श्री कृष्ण ऐसे भी बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि यादव, अपनी इंद्रियों को केवल आहार निद्रा भाई मैथुन में झुलस कर खत्म मत करो। इनकी इंद्रियों भले इंद्रियों में अगर कामना आती है तो भी क्या करो आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् त्यज्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे न शांति माप्नोति न काम कामी। कि समुद्र जिस तरह नदियां आती रहती हैं लेकिन फिर विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार जीव को क्या चाहिए कि उसके अंदर इच्छाएं भौतिक इच्छाएं भी आ रही हैं तो भी विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि उन इच्छाओं को पूरा करने से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। न काम कामी, उनको स्थिर उस इच्छाओं के सेंटर में रहकर भी स्थिर रहेंगे तो ही हमें शांति प्राप्त होगी उन इच्छाओं को पूरा करते वक्त नहीं। तो इसीलिए हृदय के अंदर जो मलिनता है जो इच्छाएं हैं वो भले आती रहें लेकिन हमें क्या करना है भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण करते रहना है करते रहना है करते रहना है, और एक समय ऐसा आएगा कि इच्छा आना बंद हो जाएगी और हृदय में केवल 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 कृष्ण का प्रेम रह जाएगा और हम भागवत महापुराण के एक एक शब्द में कृष्ण का साक्षात्कार होने लगेगा। तो आज सुत गोस्वामी ने बताया कि मैं अब उसी भागवतम को आप सबको सुनाने वाला हूँ जो मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना और सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता वेद व्यास जी से सुना। तो हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि कल से हम इन्हीं शब्दों को सुत गोस्वामी के शब्दों को श्रवण करेंगे और आज हमारा ये जो प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय वो समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के उत्स भगवान श्री कृष्ण शीर्षक तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया यूं ही साथ देते रहिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हम अच्छे तरीके से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की पात्रता, क्योंकि अब वक्ता श्री प्रभुपाद जी हमें मिल गए हैं, हमारी हमारे ऊपर कृष्ण की इतनी अनुकंपा है, तो हमें भी श्रवण करने की योग्यता प्राप्त करनी है कि हम भी ना अपने पवित्र मन के साथ श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का लाभ, श्रवण करके इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर। हरे कृष्ण।